اگر اس قسم کی صلح تام کے لیے ہندو صاحبان اور آریہ صاحبان تیار ہوں کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا نبی مان لیں اور آئندہ توہین اور تکذیب چھوڑ دیں تو میں سب سے پہلے اس اقرار نامے پر دستخط کرنے پر تیار ہوں کہ ہم احمدی سلسلے کے لوگ ہمیشہ وید کے مصدق ہوں گے اور وید اور اس کے رشیوں کا تعظیم اور محبت سے نام لیں گے، اور اگر ایسا نہ کریں گے تو ایک بڑی رقم تاوان کی جو 3 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگی ہندو صاحبوں کی خدمت میں ادا کریں گے، اور اگر ہندو صاحبان دل سے ہمارے ساتھ صفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی اقرار لکھ کر اس پر دستخط کر دیں، اور اس کا مضمون بھی یہ ہوگا کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کو سچا نبی اور رسول سمجھتے ہیں، اور آئندہ آپ کو ادب اور تعظیم کے ساتھ یاد کریں گے جیسا کہ ایک ماننے والے کے مناسب حال ہے، اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو ایک بڑی رقم تاوان کی جو 3 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگی احمدی سلسلے کے پیش رو کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یاد رہے کہ ہماری احمدی جماعت اب 4 لاکھ سے کچھ کم نہیں ہے، اس لیے ایسے بڑے کام کے لیے 3 لاکھ روپے چندہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور جو لوگ ہماری جماعت سے ابھی باہر ہیں دراصل وہ سب پراگندہ طبع اور پراگندہ خیال ہیں، کسی ایسے لیڈر کے ماتحت وہ لوگ نہیں ہیں جو ان کے نزدیک واجب الاطاعت ہے، اس لیے میں ان کی نسبت کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی تو وہ لوگ مجھے بھی کافر اور دجال قرار دیتے ہیں، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ جب ہندو صاحبان میرے ساتھ ایسا معاہدہ کر لیں گے تو یہ لوگ بھی ہرگز ایسی بیجا حرکت کے مرتکب نہیں ہوں گے کہ ایسی مہذب قوم کی کتاب اور رشیوں کو برے الفاظ سے یاد کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دلائیں۔ ایسی گالیاں تو در حقیقت انہی لوگوں کی طرف منسوب کی جائیں گی جو اس حرکت کے مرتکب ہوں گے، اور چونکہ ایسی حرکت حیا اور شرافت کے برخلاف ہے اس لیے میں امید نہیں رکھتا کہ اس معاہدے کے بعد وہ لوگ اپنی زبان کھولیں، لیکن یہ ضروری ہوگا کہ معاہدے کی تحریر کو پختہ کرنے کے لیے دونوں فریق کے 10-10 ہزار سمجھدار لوگوں کے اس پر دستخط ہوں۔ پیارو، صلح جیسی کوئی بھی چیز نہیں، آؤ ہم اس معاہدے کے ذریعے سے ایک ہو جائیں اور ایک قوم بن جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ باہمی تکذیب سے کس قدر پھوٹ پڑ گئی ہے اور ملک کو کس قدر نقصان پہنچتا ہے، آؤ اب یہ بھی آزما لو کہ باہمی تصدیق کی کس قدر برکات ہیں۔ بہترین طریق صلح کا یہی ہے، ورنہ کسی دوسرے پہلو سے صلح کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ایک پھوڑے کو جو شفاف اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے اسی حالت میں چھوڑ دیں اور اس کی ظاہری چمک پر خوش ہو جائیں، حالانکہ اس کے اندر سڑی ہوئی اور بدبودار پیپ موجود ہو۔ مجھے اس جگہ ان باتوں کا ذکر کرنے سے کچھ غرض نہیں کہ وہ نفاق اور فساد جو ہندو اور مسلمانوں میں آج کل بڑھتا جاتا ہے اس کی وجہ صرف مذہبی اختلافات تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسری اغراض اس کی وجہ ہیں جو دنیا کی خواہشوں اور معاملات سے متعلق ہیں۔ مثلا ہندوؤں کی ابتدا سے یہ خواہش ہے کہ گورنمنٹ اور ملک کے معاملات میں ان کا دخل ہو، یا کم سے کم یہ ملک داری کے معاملات میں ان کی رائے لی جائے اور گورنمنٹ ان کی ہر یک شکایت کو توجہ سے سنے اور بڑے بڑے گورنمنٹ کے عہدے انگریزوں کی طرح ان کو بھی ملا کریں۔ مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی کہ ہندوؤں کی ان کوششوں میں شریک نہ ہوئے اور خیال کیا کہ ہم تعداد میں کم ہیں، اور یہ سوچا کہ ان تمام کوششوں کا اگر کچھ فائدہ ہے تو وہ ہندوؤں کے لیے ہے نہ کہ مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے نہ صرف شراکت سے دستکش رہے بلکہ مخالفت کر کے ہندوؤں کی کوشش کے سدے راہ ہوئے، جس سے رنجش بڑھ گئی۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان وجہ سے بھی اصل عداوت پر حاشیے چڑھ گئے ہیں، مگر میں ہرگز تسلیم نہیں کروں گا کہ اصل وجہ یہی ہے، اور مجھے ان صاحبوں سے اتفاق رائے نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کی باہمی عداوت اور نفاق کا باعث مذہبی تنازعات نہیں ہیں، اصل تنازعات پولیٹیکل ہیں۔ یہ بات ہر ایک شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ مسلمان اس بات سے کیوں ڈرتے ہیں کہ اپنے جائز حقوق کے مطالبات میں ہندوؤں کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور کیوں آج تک ان کی کانگریس کی شمولیت سے انکار کرتے رہے ہیں، اور کیوں آخرکار ہندوؤں کی درستی رائے محسوس کر کے ان کے قدم پر قدم رکھا مگر الگ ہو کر، और उनके मुकाबिल पर एक मुस्लिम अंजुमन कायम कर दी, मगर उनकी शराकत को कबूल ना किया। साहिबो, इसका बायस दरअसल मजहब ही है, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर आज वही हिंदू कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमानों से आकर बगलगीर हो जाएं, या मुसलमान ही हिंदू बनकर अग्नि वायु वगैरह की परस्तिश वेद के हुक्म के मवाफिक शुरू कर दें और इस्लाम को अलविदा कह दें, तो जिन तनाज़ात का नाम अब पॉलिटिकल रखते हैं वो एकदम में ऐसे मादूम हो जाएं कि गोया कभी न थे। बस इससे जाहिर है कि तमाम बुग़्ज़ों और कीनों की जड़ दरअसल इख्तलाफ मज़हब है। यही इख्तलाफ मज़हब कदीम से जब इंतहा तक पहुंचता रहा है तो खून की नदियां बहाता रहा है। मुसलमानों, जबकि हिंदू साहिबान तुम्हें बवजह इख्तलाफ मज़हब के एक गैर कौम जानते हैं और तुम भी इस वजह से उनको एक गैर कौम ख्याल करते हो, बस जब तक इस सबब का इजाला ना होगा क्यों कर तुम में और उनमें सच्ची सफाई पैदा हो सकती है। हाँ, मुमकिन है कि मुनाफिकाना तौर पर बाहम चंद रोज़ के लिए मेल जोल भी हो जाए, मगर वो दिली सफाई जिसको दर हकीकत सफाई कहना चाहिए सिर्फ उसी हालत में पैदा होगी जबकि आप लोग वेद और वेद के ऋषियों को सच्चे दिल से खुदा की तरफ से कबूल कर लोगे। और ऐसा ही हिंदू लोग भी अपने बुखल को दूर करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक कर लेंगे। याद रखो और खूब याद रखो कि तुम में और हिंदू साहिबों में सच्ची सुलह कराने वाला सिर्फ यही एक उसूल और यही एक ऐसा पानी है जो कदूरतों को धो देगा। और अगर वो दिन आ गए हैं कि ये दोनों बिछड़ी हुई कौमें बाहम मिल जाएं, तो खुदा उनके दिलों को भी इस बात के लिए खोल देगा जिसके लिए हमारा दिल खोल दिया है। मगर इसके साथ ज़रूरी होगा कि हिंदू साहिबान के साथ सच्ची हमदर्दी के साथ पेश आओ और सुलूक और मुरव्वत को अपनी आदत करो, और ऐसे कामों से अपने तई बाज रखो जिनसे उनको दुख पहुंचे, मगर वो काम हमारे मज़हब में न वाजिबात से हों और न फ़राइज़ मज़हब से। बस अगर हिंदू साहिबान अपने सिदक दिल से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मान लें और इन पर ईमान लावें, तो ये तफर्रुका जो गाय की वजह से है इसको भी दरमियान से उठा दिया जाए। जिस चीज़ को हम हलाल जानते हैं हम पर वाजिब नहीं कि ज़रूर इसको इस्तेमाल भी करें। बेतेरी ऐसी चीज़ें हैं कि हम हलाल तो जानते हैं मगर कभी हमने इस्तेमाल नहीं की। इनसे सुलूक और एहसान के साथ पेश आना हमारे दीन की वसाया में से एक वसीयत है। खुदा को वाहिदे ला शरीक जानना, बस एक ज़रूरी और मुफीद काम के लिए गैर ज़रूरी को तर्क करना खुदा की शरीयत के मुखालिफ नहीं। हलाल जानना और चीज़ है और इस्तेमाल करना और चीज़। दीन ये है कि खुदा की मनहियात से परहेज़ करना और उसकी रज़ामंदी की राहों की तरफ दौड़ना और उसकी तमाम मखलूक से नेकी और भलाई करना और हमदर्दी से पेश आना और दुनिया के तमाम मुकद्दस नबियों और रसूलों को अपने अपने वक्त में खुदा की तरफ से नबी और मुस्लिम मानना और उनमें तफर्रुका ना डालना और हर एक नौ इंसान से खिदमत के साथ पेश आना हमारे मज़हब का ख़ुलासा यही है। मगर जो लोग नाहक खुदा से बेखौफ होकर हमारे बुज़ुर्ग नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरे अल्फाज से याद करते और आ जनाब पर नापाक तोहमतें लगाते और बदज़बानी से बाज नहीं आते हैं, इनसे हम क्यों कर सुलह करें। मैं सच सच कहता हूँ कि हम शोरा ज़मीन के सांपों और बयाबानों के भेड़ियों से सुलह कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों से हम सुलह नहीं कर सकते जो हमारे प्यारे नबी पर, जो हमें अपनी जान और माँ बाप से भी प्यारा है, नापाक हमले करते हैं। खुदा हमें इस्लाम पर मौत दे, हम ऐसा काम करना नहीं चाहते जिसमें ईमान जाता रहे। मैं इस वक्त किसी ख़ास कौम को बेवजह मलामत करना नहीं चाहता और ना किसी का दिल दुखाना चाहता हूँ, बल्कि नहायत अफसोस से आह खींच कर मुझे ये कहना पड़ा है कि इस्लाम वो पाक और सुलाकार मज़हब था जिसने किसी कौम के पेशवा पर हमला नहीं किया, और कुरान वो काबिल ताज़ीम किताब है जिसने कौमों में सुलह की बुनियाद डाली और हर एक कौम के नबी को मान लिया, और तमाम दुनिया में ये फ़ख्र ख़ास कुरान शरीफ को हासिल है जिसने दुनिया की नस्बत हमें ये तालीम दी कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। यानी तुम ऐ मुसलमानों ये कहो कि हम दुनिया के तमाम नबियों पर ईमान लाते हैं और इनमें ये तफर्रुका नहीं डालते कि बाज़ को माने और बाज़ को रद्द कर दें। अगर ऐसी सुलाकार कोई और इल्हामी किताब है तो उसका नाम लो। कुरान शरीफ ने खुदा की आम्मा रहमत को किसी ख़ानदान के साथ मखसूस नहीं किया। इसराइली ख़ानदान के जितने नबी थे, क्या याकूब और क्या इसहाक और क्या मूसा और क्या दाऊद और क्या ईसा अलैहिस्सलाम, सबकी नबुवत को मान लिया। और हर एक कौम के नबी, ख़ा हिंद में गुज़रे हैं और ख़ा फ़ारस में, किसी को मक्कार और कज़्ज़ाब नहीं कहा, बल्कि साफ़ तौर पर कह दिया कि हर एक कौम और बस्ती में नबी गुज़रे हैं और तमाम कौमों के लिए सुलह की बुनियाद डाली है। मगर अफसोस कि इस सुलह के नबी को हर एक कौम गाली देती है और हकारत की नज़र से देखती है। ऐ हम वतन प्यारो, मैंने ये बयान आपकी खिदमत में इसलिए नहीं किया कि मैं आपको दुख दूं या आपकी दिल शिकनी करूं, बल्कि मैं नहायत नेक नीयति से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिन कौमों ने ये आदत इख्तियार कर रखी है और ये नाजायज़ तरीक़ अपने मज़हब में इख्तियार कर लिया है कि दूसरी कौमों के नबियों को बदगोई और दुश्नामदही के साथ याद करें, वो ना सिर्फ बेजा मुदाखलत से, जिसके साथ उनके पास कुछ सबूत नहीं, खुदा के गुनहगार हैं, बल्कि वो इस गुनाह के भी मुर्तकिब हैं कि बनी नौ में निफाक और दुश्मनी का बीज बोते हैं। आप दिल थाम कर इस बात का मुझे जवाब दें कि अगर कोई शख्स किसी के बाप को गाली दे या उसकी माँ पर कोई तोहमत लगावे, तो क्या वो अपने बाप की इज्जत पर आप हमला नहीं करता? और अगर वो शख्स जिसको ऐसी गाली दी गई है जवाब में इसी तरह गाली सुना दे, तो क्या ये कहना बेमहल होगा कि बिलमुकाबिल गाली दिए जाने का दरअसल वही शख्स मोजिब है जिसने गाली देने में सबकत की? और इस सूरत में वो अपने बाप और माँ की इज्जत का खुद दुश्मन होगा। खुदा ताला ने कुरान शरीफ में इस कदर हमें तरीक़े अदब और अख़लाक का सबक सिखलाया है कि वो फरमाता है कि ला तसब्बुल्लज़ीना यदउना मिन दूनिल्लाही फयसब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, यानी तुम मुशरिकों के बुतों को भी गाली मत दो कि वो फिर तुम्हारे खुदा को गालियाँ देंगे, क्योंकि वो उस खुदा को जानते नहीं। अब देखो कि बावजूद ये कि खुदा की तालीम की रूह से बुत कुछ चीज़ नहीं, मगर फिर भी खुदा मुसलमानों को ये अख्लाक सिखलाता है कि बुतों की बदगुई से भी अपनी ज़बान बंद रखो। और सिर्फ नरमी से समझाओ, ऐसा ना हो कि वो लोग मुश्तइल होकर खुदा को गालियाँ निकालें और उन गालियों के तुम बायस ठहर जाओ। बस इन लोगों का क्या हाल है जो इस्लाम के इस अज़ीमु शान नबी को गालियाँ देते और तौहीन के अल्फाज से इसको याद करते और वहशियाना तरीक़ों से इसकी इज्जत और चाल चलन पर हमला करते हैं। वो बुज़ुर्ग नबी जिसका नाम लेने से इस्लाम के अज़ीमु शान बादशाह तख्त से उतरते हैं और उसके अहकाम के आगे सर झुकाते और अपने तई उसके अदना ग़ुलामों से शुमार करते हैं, क्या ये इज़्ज़त खुदा की तरफ से नहीं? खुदादाद इज्जत के मुकाबिल पर तहकीर करना उन लोगों का काम है जो खुदा से लड़ना चाहते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के वो बरगजीदा रसूल हैं जिनकी ताईद और इज्जत जाहिर करने के लिए खुदा ने दुनिया को बड़े बड़े नमूने दिखाए हैं। क्या ये खुदा के हाथ का काम नहीं जिसमें 20 करोड़ इंसानों का मोहम्मदी दरगाह पर सर झुका रखा है? अगरचे हर एक नबी अपनी नबूवत की सच्चाई के लिए कुछ सबूत रखता था, लेकिन जिस कदर सबूत आ जनाब की नबूवत के बारे में जो आज तक जाहिर हो रहे हैं, उनकी नज़ीर किसी नबी में नहीं पाई जाती। आप लोग इस दलील को नहीं समझ सकते कि जब ज़मीन गुनाह और पाप से पलीद हो जाती है और खुदा के तराजू में बदकारियाँ और बदचलनियाँ और बेहाकियाँ नेक कामों से बहुत बढ़ जाती हैं, तब खुदा की रहमत तकाजा करती है कि ऐसे वक्त में किसी अपने बंदे को भेजकर ज़मीन के फसादों की इसलाह की जाए। बीमारी तबीब को चाहती है, और आप लोग इस बात के समझने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेदाद रखते हैं, क्योंकि जैसा कि बकौल आप साहिबों के, वेद ऐसे वक्त में नहीं आया जबकि गुनाह का तूफ़ान बरपा था, बल्कि ऐसे वक्त में आया जबकि ज़मीन पर गुनाह का कोई सैलाब न था। तो क्या आप साहेबों की नज़र में ये बात कयास से दूर है कि ऐसे वक्त में कोई नबी ज़ाहिर हो जबकि गुनाह का तुंद सैलाब हर एक मुल्क में अपनी तेज़ रफ्तार के साथ जारी हो। मैं नहीं उम्मीद रखता कि आप लोग इस तारीख़ी वाक़े से बेखबर होंगे कि जब हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनद रिसालत को अपने वजूद से इज़्ज़त दी, तो वो ज़माना एक ऐसा तारीख़ ज़माना था कि कोई पहलू दुनिया की आबादी का बदचलनी और बदअकीदगी से खाली न था। और जैसा कि पंडित दयानंद साहब अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, इस ज़माने में इस मुल्क आर्यावर्त में भी बुत परस्ती ने खुदा परस्ती की जगह ले ली थी और वेदक मज़हब में बहुत सा बिगाड़ हो गया था। ऐसा ही पादरी फिंडल साहब, मुसन्निफ़ मीज़ानुल हक, जो ईसाई मज़हब का सख्त हामी एक यूरोपियन अंग्रेज़ है, वो अपनी किताब मीज़ानुल हक में लिखता है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में सब कौमों से ज़्यादा बिगड़ी हुई ईसाई कौम थी और उनकी बदचलनियाँ ईसाई मज़हब की आर और नंग का मूजिब थीं। और ख़ुद कुरान शरीफ भी अपने नुज़ूल की ज़रूरत के लिए ये आयत पेश करता है, ज़हर अल फसादु फिल बर्रे वल बहरी, यानी जंगल भी बिगड़ गए और दरिया भी बिगड़ गए। इस आयत का ये मतलब है कि कोई कौम ख़्वाह वेश्याना हालत रखती थी और ख़्वाह अक्लमंदी का दावा करती हैं, फसाद से खाली नहीं। अब जबकि तमाम शहादतों से भी साबित होता है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लोग, क्या मशरिकी और क्या मगरबी और क्या आर्यावर्त के रहने वाले और क्या अरब के रेगिस्तान के बाशिंदे और क्या जज़ीरों में अपनी सुकूनत रखने वाले, सब के सब बिगड़ गए थे और एक भी नहीं था जिसका खुदा के साथ ताल्लुक़ साफ़ होता, और बदअमलियों ने ज़मीन को नापाक कर दिया था। तो क्या एक अक्लमंद को ये बात समझ नहीं आ सकती कि ये वही वक्त है और वही ज़माना था जिसकी निस्बत अक्ल तजवीज़ कर सकती है कि ऐसे तारीख़ ज़माने में ज़रूर कोई अज़ीमु शान नबी आना चाहिए था। रहा ये सवाल कि इस नबी ने दुनिया में आकर क्या इस्लाह की, इस सवाल का जवाब जैसा कि एक मुसलमान आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह के बारे में दे सकता है, मैं ज़ोर से कहता हूँ कि ऐसा साफ़ और मुदल्लिल जवाब ना कोई ईसाई दे सकता है और ना कोई यहूदी और ना कोई आर्या। पहला मकसद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरब की इस्लाह थी और अरब का मुल्क उस ज़माने में ऐसी हालत में था कि बमुश्किल कह सकते हैं कि वो इंसान थे। कौन सी बदी थी जो उनमें ना थी और कौन सा शिर्क था जो उनमें राइज ना था। चोरी करना, डाका मारना उनका काम था और नाहक का खून करना उनके नज़दीक एक ऐसा मामूली काम था जैसा कि एक चूंटी को पैरों के नीचे कुचल दिया जाए। बच्चों को कत्ल करके उनका माल खा लेते थे, लड़कियों को जिंदा बगोर करते थे, जनाकारी के साथ फ़ख्र करते और एलानिया अपने कसीदों में उन गंदी बातों का जिक्र करते थे। शराब खारी इस कौम में इस कसरत से थी कि कोई घर भी शराब से खाली ना था और कुमारबाजी में सब मुल्कों से आगे बढ़े हुए थे। हैवानों की आर थी और सांपों और भेड़ियों की नंग। फिर जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस्लाह के लिए खड़े हुए और अपनी बातनी तवज्जो से उनके दिलों को साफ करना चाहा, तो उनमें थोड़े ही दिनों में ऐसी तब्दीली पैदा हो गई कि वो वहशियाना हालत से इंसान बने और फिर इंसान से मुहज़्ज़िब इंसान और मुहज़्ज़िब इंसान से बाखुदा इंसान और आखिर खुदा ताला की मोहब्बत में ऐसे महव हो गए कि उन्होंने एक बेहिस उज़्व की तरह हर एक दुख को बर्दाश्त किया। वो अनवाए अकसाम की तकालीफ से अजाब दिए गए और सख्त बेदर्दी से ताजियानों से मारे गए और जलती हुई रेत में लिटाए गए और क़ैद किए गए और भूखे प्यासे रखकर हलाकत तक पहुंचाए गए, मगर उन्होंने हर एक मुसीबत के वक्त आगे कदम रखा और बेतेरे इनमें ऐसे थे कि उनके सामने उनके बच्चे कत्ल किए गए और बेतेरे ऐसे थे कि बच्चों के सामने वो सूली दिए गए। और जिस सिद्क से उन्होंने खुदा की राह में जाने दी, इसका तसव्वुर करके रोना आता है। अगर उनके दिलों पर ये खुदा का तसर्रुफ़ और उसके नबी की तवज्जो का असर न था, तो फिर वो क्या चीज़ थी जिसने उनको इस्लाम की तरफ खींच लिया और एक फ़ौकुल आदत तब्दीली पैदा करके उनको ऐसे शख्स के आस्ताने पर गिरने की रग़बत दी कि जो बेकस और मिस्कीन और बेजरी की हालत में मक्के की गलियों में अकेला और तन्हा फिरता था। आखिर कोई रूहानी ताकत थी जो उनको सिफली मकाम से उठा कर ऊपर को ले गई। और अजीब तर बात यह है कि अक्सर उनके उनकी कुफ्र की हालत में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन और आ जनाब के खून के प्यासे थे। बस मैं तो इससे बढ़कर कोई मौजज़ा नहीं समझता कि क्यों कर एक गरीब मुफलिस तन्हा बेकस ने उनके दिलों को हर एक कीने से पाक करके अपनी तरफ खींच लिया, यहाँ तक कि वो फखरिया लिबास फेंक कर और टाट पहन कर खिदमत में हाजिर हो गए।